हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट शिवाली आनंद। मैं आपको तब से अब तक मैं सुनाती हूं स्टोरीज ऐसी जो सिंपल डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं होती, जो बड़ी घूमी सी टेढ़ी सी जिंदगियों में लिपटी सी होती हैं। ये जिंदगियां जो कभी फिक्टिशियस होती हैं, कभी रियल होती हैं, लेकिन अगर वो फिक्टिशियस भी होती हैं तो वो किसी के दिमाग में पैदा हुई भी फिक्टिशियस स्टोरीज होती हैं। और जैसे हमें पता है, हमारा दिमाग स्टोरीज़ उन चीज़ों से बुनता है जिनसे हम गुज़रते हैं। तो अगर आप एक स्टोरी सुन रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ वो फिक्टिशियस है या वो रियल है, वो रियलिटी से जुड़ी होती है। आज की जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ, वो स्टोरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप स्टोरी है। वो स्टोरी डीप है क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुरंगे हैं, उसके कैरेक्टर्स की मल्टी कलर्ड पर्सनालिटीज़ हैं। ये स्टोरी तब की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। पांडवों के अज्ञातवास की बात करने से पहले मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे कुछ लिसनर्स को प्रॉब्ली ये जानने में भी इंटरेस्ट होगा कि ये सिचुएशन कैसे आई कि वो अज्ञातवास तक पहुँचे। ये तो आपको पता ही है कि दुर्योधन, जो कि काफ़ी जलता था पांडवों से, उसे पांडवों से ये टेंशन थी कि ये वापस क्यों आ गए। पांडव तो चले गए थे, क्यों इनके बच्चों को वापस लाया गया हस्तिनापुर, क्यों ये हमारी बराबरी पे बैठते हैं, और उससे भी बढ़ के क्यों लोग इन्हें हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी इस टेंशन के रिज़ल्ट को अगर हम देखें तो वो ये था कि उसके पास एक कोटरी, उसके पास एक ग्रुप सा डेवलप हो गया था उन लोगों का, जो उसकी काफ़ी एप्पल पॉलिशिंग करते थे, जो उसको काफ़ी जिसे कह सकते हैं चाटुकारिता करते थे उसकी, जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। इस ग्रुप में एक तो था उसका भाई दुशासन, जो कि काफ़ी आगे चलता था इस ग्रुप में, फिर थे उसके मामा शकुनी, और फिर था उसका दोस्त कर्ण। धृतराष्ट्र हमेशा बेटे के प्यार के बीच में और एज ए राजा उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके बीच में खिंचे रहते थे। बट जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं, यूजुअली धृतराष्ट्र दुर्योधन के पक्ष में ही रहते थे। तो एक तरह से ये गैंग सा था जो कि ये चाहता था कि पांडव किसी तरह से वहाँ से चले जाएं, और इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया था। उस प्लान के बारे में आपको पता ही है कि क्या हुआ था उसमें। युधिष्ठिर ने शकुनी के साथ दो बार जुआ खेला था। पहले जुए के खेल में उन्होंने अपनी नई नई प्यारी सी नगरी इंद्रप्रस्थ, जिसे उन्होंने बसाया था, उसे हार दिया था। उसके बाद उन्होंने खुद को, अपने भाइयों को और द्रौपदी को भी हार दिया था। वो उन्होंने पहली बार जुआ खेला था शकुनी के साथ, जिसमें वो सब कुछ हार गए थे, जिसमें द्रौपदी को दुशासन खींचते हुए सभा में लाया था, जिसमें दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी। जो भी उस दिन हुआ था उसकी वजह से धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके कुल की वधु का ये तिरस्कार होगा, ये इंसल्ट होगी। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा था कि कोई भी तीन चीज़ें तुम मुझसे मांग लो और मैं वो करूँगा। और द्रौपदी ने तीन चीज़ें ये मांगी थी कि पहला ये कि जो राजपाट है मेरे पति का वो उन्हें वापस दे दिया जाए, और दूसरा ये कि जो हम सब हारे जा चुके हैं हम सबको रिस्टोर कर दिया जाए, हम में से कोई भी दास बन के ना रहे, हम लोग सब वापस रिस्टोर हो जाएं, जो हमारी रॉयल पोजीशंस थी उस पर, और हम किसी के दास ना रहें। तीसरे वचन के टाइम पर, तीसरे वरदान के टाइम पर द्रौपदी ने कहा कि मैं लालची नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं और कुछ नहीं मांगना चाहती। तीसरा वरदान द्रौपदी ने नहीं मांगा क्योंकि उसने कहा कि जब मेरे को वो सब कुछ मिल गया है जो मुझे चाहिए था, जो हमारा खोया था, तो इसके अलावा मैं और कुछ मांगूंगी तो वो लालच की वजह से होगा, जो जो कि मैं मांगना ठीक नहीं समझती। सो दिस वॉज द फर्स्ट गेम। तो जब पांडव वापस जाने लगे, उनका सब कुछ रेस्टोर हो चुका था, तो शकुनी और दुर्योधन ने फिर से डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सब कुछ गलत हो गया। धृतराष्ट्र ने सारा जो हमने किया था उस पर पानी फेर दिया। तो उन्होंने फिर से युधिष्ठिर को ललकारा और कहा कि आप आ जाओ फिर से, हम एक बार और खेलते हैं, और अगर इस गेम में आप जीते तो बाकी राजपाट भी आपका, और अगर नहीं जीते आप, अगर आप हार गए, तो फिर आप 12 साल के वनवास पे जाएंगे और 1 साल का अज्ञातवास झेलेंगे। युधिष्ठिर फिर आकर के बैठ गए जुआ खेलने और फिर हार गए, और इसीलिए उन्हें जाना पड़ा अज्ञातवास पे। कुंती पीछे रह गई थी, वो नहीं गई थी, वो विदुर के घर में रहने लगी थी क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी और वनवास उनके लिए कठिन होता। तो जब पांडव वनवास में थे तो उसी समय उन्होंने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अज्ञातवास में वो क्या करेंगे, क्योंकि अज्ञातवास की कुछ कंडीशंस थी। पहली ये कंडीशन थी ऑफ कोर्स कि उनको इनकॉग्निटो रहना पड़ेगा, कोई उन्हें पहचान ना पाए, कोई उन्हें देख ना पाए, कोई ये ना समझ पाए कि वो पांडव हैं, क्योंकि अगर वो हो जाता तो फिर वो अज्ञात नहीं रहते। और ऑब्वियसली उन्हें पता था कि दुर्योधन पूरी कोशिश करेगा उनके अज्ञातवास को तोड़ने की, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि अगर अज्ञातवास में उन्हें पहचान लिया गया तो इन दैट केस उनको फिर से 12 साल के वनवास पे जाना पड़ेगा और 1 साल का एक फिर अज्ञातवास पूरा करना पड़ेगा। दिस वॉज एज यू कैन सी अ बिट साइक्लिकल। जैसे कि प्लान किया गया था वो ये था कि किसी भी तरह से पांडवों को वापस आने से रोका जा सके। सो दिस वॉज द सिचुएशन विच वॉज देयर विच एग्जिस्टेड जब पांडव अपने अज्ञातवास के लिए गए। अब अज्ञातवास के लिए जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पांडव सब अलग अलग थे। पांडव अगर एक साथ रहते और अगर अपनी वाइफ के साथ रहते तो इन दैट केस ईजी हो जाता था पहचानना उनको। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक नए राज्य में जाएंगे और वहाँ पर जहाँ कोई उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वहाँ जा कर के दे आर गोइंग टू गो टू द किंग, राजा के पास जा कर के वो अपनी कलाएँ बताएंगे और फिर उसके बेसिस पर वो नई जॉब्स करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मत्स्य किंगडम में जाएंगे, मत्स्य राज्य जो कि साउथ वेस्ट की तरफ पड़ता था कुरु राज्य की। कुरु राज्य वो एरिया था जो आज की तारीख में आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वो अगर आप ले लें तो दैट वाज कुरु राज्य। जो मत्स्य राज्य था वो उसकी उसका जो कैपिटल था, कैपिटल सिटी थी विराटनगर, वो कुछ कुछ जो आज का राजस्थान है, इनफैक्ट राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें पड़ता था। और वहाँ जा कर के युधिष्ठिर गए विराट के पास, उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया एज ए पॉसिबल कोर्टियर, सभासद के रूप में, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे और वो उनको जुआ खेलना भी बहुत अच्छा आता था। तो वो राजा विराट के एक तरह से हेल्पर बन गए इस केस में, कि जब वो जुआ खेलते थे राजा तो ये साथ में बैठते थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन लाना चाहती हूँ बिटवीन जुआ और पचीसी का जो खेल वो खेलते थे। जब आप किसी चीज़ को दांव पे लगाना शुरू कर देते हैं, जब आप सिंपल इनोसेंट गेम से हट करके जब आप बाजियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, तब आप गैम्बल करते हैं, क्योंकि आप रिस्क को बढ़ाते चलते हैं। तो ये तो किया युधिष्ठिर ने। भीम बने रसोईया, और उसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि भीम बहुत अच्छे कुक थे। ये याद रखने से पहले आप ये भी याद रखिए कि भीम वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स एवर। अर्जुन के बाद पांडवों में जो वॉरियर थे वो भीम थे। भीम का फेवरेट वेपन गदा था, बाय द वे दुर्योधन का भी फेवरेट वेपन गदा था। तो वो गदा से युद्ध करते थे मोस्टली, बट द फैक्ट वॉज कि शायद उनको गदा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतने बलिष्ठ थे, इतने बलशाली थे, इतने स्ट्रांग थे। His body was a weapon in itself. तो भीम बने रसोईया और उन्होंने अपना नाम रखा वल्लभ। अर्जुन ने ये डिसीजन लिया कि वो बनेंगे रेहनला। रेहनला यानी कि यूनिक, यूनिक यानी कि हिजड़ा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिजड़े का रूप बनाएंगे और हिजड़े के रूप में वो जा करके उत्तरा के डांस टीचर बन गए। उत्तरा थी राजा विराट और उनकी पत्नी सुदेशना की बेटी। अर्जुन क्यों उत्तरा के डांस टीचर बने, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि जब अर्जुन उनके पिता इंद्र से मिलने वो स्वर्ग गए थे, तो वहाँ पे उर्वशी जो कि एक अप्सरा थी वो उन पर मोहित हो गई थी। और उसने जाकर के अर्जुन से बात की थी और अर्जुन से कहा था कि मैं आपके साथ समय गुजारना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने उसे ये कह करके ठुकरा दिया था कि उर्वशी तुम मेरी माँ समान हो, क्योंकि तुम मेरे पिता की अप्सरा हो, तुम मेरी माता समान हो, और इसलिए आई कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद यू। जिस पर उर्वशी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अगर आप अप्सराओं का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अप्सराओं का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था कि वो इतनी खूबसूरत होती थी, उनमें वो मोहिनी विद्या होती थी कि वो किसी भी पुरुष को मोहित कर सकें। तो शी टुक इट एज एन इंसल्ट कि मैं अर्जुन को मोहित नहीं कर पा रही। और इस गुस्से में उसने अर्जुन को श्राप दिया था और उसने कहा था कि तुम एक साल के लिए अपना पौरुष खो दोगे, यू विल नॉट बी अ मैन, यू विल बिकम अ यूनिक। तो उन्होंने अपना वही गेटअप बनाया, उन्होंने अपने लंबे लंबे बाल किए, उन्होंने बालों में चुटी ले डाले, चूड़ियाँ पहनी और वो जा करके बन गए उत्तरा के डांस टीचर। अब बचे नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव जैसे आपको पता ही है अश्विनी पुत्र थे और उन्हें पशु पक्षियों से, प्राणियों से बहुत प्यार था। तो उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया, एक ने काउहर्ड के फॉर्म में यानी कि ग्वाले की तरह, और दूसरे ने प्रेजेंट किया अपने को घोड़ों के रखवाले के फॉर्म में। तो नकुल ग्रंथिक नाम से गए और उन्होंने अस्तबल संभाला, और सहदेव पहुँचे तंतीपाल नाम से और वो बन गए ग्वाले। ये तो हुआ पांडवों का ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से वो अलग अलग एरियाज में विराट के राज्य में रहने लगे। अब बची द्रौपदी। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड शी हैड एक्सेप्शनल ग्रेस। तो उन्होंने अपने को सुदेशना के सामने प्रेजेंट किया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सुदेशना कई बार जा करके एक खिड़की के पास बैठती थी जो उनके महल में थी, जहाँ से उनको पूरा मार्केट दिखता था। तो द्रौपदी ने अपने को उन्हें मार्केट के थ्रू प्रेजेंट किया, वो वहाँ कुछ खरीदारी करने निकली। और जब सुदेशना ने उनका चलना फिरना देखा, उनकी ब्यूटी देखी, तो उसने कहा कि ये कौन है, ये तो बहुत डिफरेंट लग रही है, ये ज़रूर किसी अच्छी फैमिली से है, इसे लेके आओ। तो इस तरह से सुदेशना ने द्रौपदी को अपने पास बुलवाया और द्रौपदी को उसने एक काम दिया। पता करने के बाद ऑफ कोर्स कि द्रौपदी क्या करती है, प्रॉबेबली द्रौपदी हैड टू गो थ्रू अ स्मॉल इंटरव्यू। उसने क्वेश्चंस पूछे, उसने पूछा भाई तुम कौन हो, क्यों आई हो। तो उसने कहा द्रौपदी ने कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि इस समय हमारा कुछ फेट अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड्स हैं और मैं गंधर्वों की पत्नी हूँ, और आपने जो मुझ में देखा वो शायद इसीलिए है क्योंकि मैं गंधर्वों की पत्नी हूँ। तो सुदेशना ने द्रौपदी को अपने पास अपनी दासी बना के रख लिया और द्रौपदी ने अपना नाम बताया सैरंध्री। सो नाउ ऑफ कोर्स यू नो द नेम्स, पांडव क्या करते थे वहाँ पर अज्ञातवास में और उनके नाम क्या थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग वॉज रनिंग ब्यूटिफुली विथ क्लॉक वर्क प्रिसिशन। इतनी अच्छी तरह से सब चल रहा था कि पांडवों को ये भरोसा होने लगा था कि दुर्योधन कितना भी ढूंढ ले उन्हें, वो ढूंढ नहीं पाएगा। बट एज यू नो थिंग्स हैव अ वे ऑफ गोइंग रॉन्ग व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम टू बी। जब आप सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, उस समय लेडी लक अपना रौद्र रूप दिखाती है। ऐसा ही द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी की ज़िंदगी में तूफान आया कीचक नाम से। कीचक था रानी सुदेशना का भाई, और खाली वो रानी सुदेशना का भाई ही नहीं था, वो विराट की सेनाओं का सेनापति भी था। और खाली इतना ही नहीं, वो बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रांग था, और उसका बहुत दबदबा था। इनफैक्ट सब लोग उससे घबराते थे, डरते थे, और राजा विराट को भी ये पता था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब किसी की इतनी इम्पोर्टेंस हो जाती है तो वो इंसान काफ़ी घमंडी हो जाता है। कीचक के साथ भी यही हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ रॉयल फैमिली था, वो रानी का भाई था, तो ही हैड हिज ओन चैम्बर्स, उसके अपने रूम्स थे महल में, रहता वो वहीं था। वो आया अपनी बहन से मिलने, और जब वो अपनी बहन से मिलने आया तो उसने देखा सैरंद्री को, जो कि उस समय रानी के बाल बना रही थी। जब उसने सैरंद्री को देखा तो वो पागल सा हो गया, वो एकदम मोहित हो गया सैरंद्री पे। उसने अपनी बहन से कहा, कौन है ये? तो उसकी बहन ने कहा, मेरी दासी है, अभी नई रखी है। जब सैरंद्री वहाँ से किसी काम के लिए निकली तो उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे सैरंद्री से मिलवा दो, मैं इसको देखते ही इस पर मोहित हो गया। इतनी खूबसूरत है ये, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि ये इंसान से ज़्यादा डिवाइन लगती है। ये कौन है, इसको दासी बनने की क्या ज़रूरत थी? मैं इसे दासी नहीं रहने दूंगा, मैं इसे अपना बनाऊंगा। तो सुदेशना ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन उसे भी पता था कि उसका भाई अगर डिसाइड कर लेता है तो फिर उसे रोकना मुश्किल है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। भाई बहन ने मिलकर के एक छोटा सा प्लान बनाया। कीचक गया द्रौपदी के पास, एकांत में मिला उससे, और बोला कि सैरंद्री, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम क्यों यहाँ दासी बनी हुई हो? मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से निकाल ले जाऊंगा। जब द्रौपदी ने, यानी कि सैरंद्री ने यह सुना तो उसे तो बड़ी घबराहट हुई। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ना आपको ऐसा करना चाहिए। मेरे पति गंधर्व हैं, और अगर उन्हें पता लग गया तो वो तहस नहस कर देंगे चीज़ों को। और दूसरी चीज़, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आश्रित हूँ यहाँ पे, मैं दासी हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। आप प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट लुक नाइस ऑन यू, यू शुडंट से सच थिंग्स। एंड द्रौपदी वॉज राइट, बट कीचक वॉज नॉट टू बी डिसवेडेड। कीचक को रोकना इम्पॉसिबल था। ही हैड सेट हिज आईज ऑन द्रौपदी, ही वॉन्टेड हर नो मैटर वॉट। तो उसने एक प्लान हैच किया अपनी बहन के साथ। वो अपनी बहन के पास गया और उसने फिर अपनी बहन को बताया कि कुछ भी हो, मुझे तो सैरंद्री चाहिए। प्लान थोड़ा सा गलत सा था, नेफेरियस सा प्लान था। और प्लान ये था कि द्रौपदी, यानी कि सैरंद्री को सुदेशना भेजेगी उस जगह पे जहाँ पे ये सारी अपनी शराब रखते थे। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि अगर हम रॉयल्टी की बात करें तो ऑफ कोर्स उनके लिए अच्छी से अच्छी मदिरा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। तो उनकी सारी मदिराएं एक जगह रहती थी, यूजुअली एक सेलर में रहती हैं। आई डू नॉट नो कि उनके पास सेलर था या क्या था, बट इट वॉज डिसाइडेड कि सुदेशना वहाँ पर सैरंद्री को भेजेगी। और सुदेशना ने वही किया, उसने सैरंद्री को वहाँ भेजा और कहा कि वहाँ से ये पर्टिकुलर वाइन लेते हो। सैरंद्री वहाँ गई, शी हैड नो आइडिया दैट कीचक वॉज देयर, ही वॉज वेटिंग फॉर हर टू कम। वो वेट कर रहा था कि कब वो अंदर आए और वो उसे पकड़ ले। जैसे ही द्रौपदी अंदर आई, उसने द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा, सैरंद्री, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें महल दूंगा, मैं तुम्हें दासियाँ दूंगा, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद दूंगा, प्लीज़ बी माइन, मेरी बन जाओ। सैरंद्री ने भागने की कोशिश की तो कीचक ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर सैरंद्री बहुत घबरा गई और उसने घबरा करके हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश की। कीचक को गुस्सा आ गया, कीचक ने उसके बाल पकड़े और उसे खींचना शुरू कर दिया। ये दूसरी बार हुआ था द्रौपदी के साथ, आपको तो पता ही होगा, पहली बार चीरहरण में उसके साथ ये हुआ था। दिस वॉज द सेकेंड टाइम किसी ने उसकी इतनी इंसल्ट की थी। द्रौपदी को लेकर के वो कॉरिडोर में खींचता हुआ आगे पहुंचा, जहां पर जो एरिया था वहां से राजा उसे देख सकते थे, और उसने द्रौपदी को दिखा के कहा, देखो कोई आया तुम्हारी मदद के लिए। यहाँ पे मैं राजा से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। Nobody is going to come and help you. Do as you like, but मैं तुम्हें पाके रहूँगा। राजा के पास बैठे हुए थे कंक यानी कि युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर के पीछे था रसोईया वल्लभ। तीनों ने द्रौपदी की दशा को देखा, बट वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर वो कुछ कहते, अगर वो कुछ करते, तो उनको ये डर था कि अज्ञातवास टूट जाएगा। द्रौपदी बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। उस रात सबसे बचते बचाते वो पहुंची भीम के कमरे में। भीम रसोईया बन के काम कर रहे थे, तो उनके पास एक छोटा सा कमरा था। वहां जाकर के उसने भीम को कहा कि उसे भीम की मदद चाहिए। इनफैक्ट उसने बहुत कुछ ऐसा कहा उस समय जिससे हमें पता लगता है कि द्रौपदी के दिल में क्या दर्द था। भीम का मन पिघल गया। भीम ने कहा, द्रौपदी तुम क्या सोचती हो कि मेरे दिल में दर्द नहीं उठा जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा? तब भी मेरे दिल में दर्द उठा था जब तुम्हारे साथ कुरु सभा में ये हुआ था। आज भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कीचक को ख़त्म कर देना चाहता था, जैसे मैं दुशासन और दुर्योधन को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। बड़े भाई वहाँ बैठे थे, और अगर उन्होंने अज्ञातवास पूरा नहीं किया तो हम सबका क्या होगा, तुम्हें पता है। सो दिस इज़ वाई आई डिड नॉट से एनीथिंग, बट आई विल हेल्प यू। ये डिसीजन होने के बाद कि वो हेल्प कैसे करेंगे, द्रौपदी उन्हें गले लगा के चली गई वापस अपने क्वार्टर्स में। प्लान ये बना कि जहाँ पे लड़कियाँ और उत्तरा जो कि प्रिंसेस थी, वो वृहन्नला से डांस सीखती थी, वो हॉल रात को अनऑक्यूपाइड रहता था, उसमें कोई नहीं आता जाता था। तो ये डिसाइड हुआ कि द्रौपदी वहाँ पर कीचक को इनवाइट करेगी, और फिर जब कीचक वहाँ आएगा तो भीम उसे ख़त्म कर देंगे। ऐसा ही हुआ। अगली बार जब कीचक सामने आया, सैरंद्री बिल्कुल बदली हुई थी। उसने नाजुक सी एक स्माइल देकर के कीचक को कहा, बनना तो आपकी मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे गंधर्व पति, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। अगर किसी तरह ये बात बाहर आ गई, उन्हें पता लग गया, तो वो आपको तो छोड़िए, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ना मैं ये चाहती हूँ कि आपका कोई नुकसान हो, ना मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेइज्जती हो, तो इसलिए हमें ऐसी जगह मिलना पड़ेगा जहाँ कोई नहीं आता जाता। और ये कह करके द्रौपदी ने अपनी पसंद का वेन्यू बताया। उसने कहा कि जहाँ पे राजकुमारी उत्तरा और लड़कियाँ वृहन्नला से नाचना गाना सीखती हैं, वहाँ पर मैं आपसे मिलूँगी रात को जब कोई नहीं होगा। कीचक बड़ा खुश हुआ, उसे तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। ही वेंट बैक, जाके उसने अपने को तैयार किया, उसने अपने को इत्र लगाया, उसने अपने को बिल्कुल रेडी किया रात के लिए, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग सैरंद्री टू बी देयर। वो पहुंचा रात को वहीं जहां पर सैरंद्री ने उसे मिलने बुलाया था। एक बेड सा था वहां पर, सट्टी सी थी जहां पे लोग बैठते थे। वहां पे उसने देखा कि कोई लेटा है। अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, बट हल्की सी आउटलाइन उसने देखी और उसकी सांसें तेज हो गई। उसे लगा सैरंद्री वहाँ लेटी है, और उसने जाके कहा, सैरंद्री तुम कितनी खूबसूरत हो, कई दिनों से मैं पागल सा हो गया हूँ तुम्हें पाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, सब कुछ, आओ मुझे गले लगा लो। भीम चादर के नीचे लेटे लेटे ये सब सुन रहे थे। उनका गुस्सा तेज होता जा रहा था। उन्होंने चादर को एक तरफ फेंका और उन्होंने कीचक की गर्दन पकड़ ली, और उसके बाद वो घमासान हुआ जिसमें कीचक ने उन्हें बराबरी की फाइट दी। बहुत लड़ाई हुई उनकी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कीचक का पल्ला भारी नजर आ रहा था। ये और बात है कि रात के उस अंधेरे में उस अकेले हॉल में उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द्रौपदी। इन द एंड भीम ने उसे ख़त्म कर दिया। कीचक की बाहें, उसकी टांगें, उसकी गर्दन सब उखाड़ के अलग कर दी। कीचक वॉज डेड, और द्रौपदी के ऊपर जो एक साया आया था वो गुजर गया। आई फिनिश द स्टोरी हियर, क्योंकि इसमें हम कई चीज़ें देखते हैं। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हमारी स्टोरीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये स्टोरी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इट इज़ नॉट अ सिंपल स्टोरी ऑफ एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए ख़त्म कहानी। इट इज़ नॉट लाइक दिस एट ऑल। अगर हम इस स्टोरी को फिर से देखें, एक क्विक रिवाइंड में देखें, तो वॉट वी रियलाइज इज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड देर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड। जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि जुआ बुरी चीज़ है। वेल, दिस इज़ अ लेसन जो महाभारत के थ्रू कई बार दिया जा चुका है, कई बार लोगों ने समझने की कोशिश की है, कुछों ने समझा है, कुछों ने नहीं समझा। ये एक ऐसा लेसन है जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ग्लोबल सा लेसन है कि जुआ ना खेलें, प्लीज़ डू नॉट गैम्बल, यू विल बी हैप्पियर। अब कुछ और बातें हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए तो वो पहले से अपनी स्टोरीज़ के साथ प्रिपेयर्ड थे। पहले से उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि वो मत्स्य किंगडम जाएंगे, और उसका रीज़न भी था, वो ये कि कुरु राज्य से ज़्यादा कनेक्शन मत्स्य किंगडम का नहीं था। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स दे फेल्ट दैट इट वॉज सेफ टू गो देयर। उनका प्लान इवेंचुअली फ्रक्टिफाई हुआ, और अगर उनके अज्ञातवास ख़त्म होने से तकरीबन 15 दिन पहले ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो इट वॉज़ क्वाइट पॉसिबल कि शायद इवन एंड तक दुर्योधन को नहीं पता लगता। एक्चुअली जब ये सारा कांड हुआ उसके बाद दुर्योधन के पास ये न्यूज़ आई, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, और जब ये घटनाएं उसे पता लगें तो उसके दिमाग में डाउट आया कि हो सकता है कि ये पांडव हों, बट इट वॉज़ अ डाउट दैट ही डिड नॉट एक्ट अपॉन। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि पांडवों ने यूनिटी दिखाई, उन्होंने कॉमन पर्पज़ के साथ काम किया, उनमें से कोई भी उस पर्पज़ से नहीं हटा डिस्पाइट द पेन इट कॉस्ट देम। दिस इज़ अ बिग थिंग, दिस इज़ रियल टीम वर्क, दिस इज़ वर्किंग विद अ कॉमन गोल। पांचों ने कॉमन गोल के साथ काम किया। द्रौपदी ने इंश्योर किया कि वो एंड तक इस बात को अपने अंदर रखती रही कि वो पांडवों की पत्नी है। वो हेल्प भी मांगने गई तो वो भीम के पास गई। द्रौपदी ने उस समय जो भीम से कहा वो इतना हार्ट ब्रेकिंग है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको मैं इस स्टोरी में आपको नहीं सुनाना चाहती थी। मैंने ये सोचा कि अगर कोई चीज़ इतनी स्ट्रांग है तो जहाँ तक हो सके वो चीज़ मैं आपको द्रौपदी के इमोशंस के साथ सुनाऊँ, तो वो मैं फिर से एक दूसरे एपिसोड में द्रौपदी की आपबीती के फॉर्म में आपको सुनाऊँगी। आई विल ट्राई टू रिकैप्चर जो उन्होंने उस समय फील किया जब वो भीम के पास गई थी, जब वो अकेला फील कर रही थी, जब वो कीचक से तंग आ चुकी थी, तब जो उन्होंने फील किया, दैट इज समथिंग दैट आई विल टॉक टू यू अबाउट इन अ डिफरेंट एपिसोड। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। द सेकेंड थिंग वॉज अबाउट टीम वर्क, इट वॉज ऑल्सो अबाउट हैविंग अ कॉमन गोल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन फाइनल थिंग, एंड द फाइनल थिंग इज अबाउट द वे सुदेशना बिहेव्ड। आज की तारीख में हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है दैट अ वुमन विल स्टैंड विद द वुमन, ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी। बट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट अ वुमन हैज़ टू ऑल्सो थिंक ऑफ हरसेल्फ। सुदेशना विराट की पत्नी थी, वो एक रानी थी, वो उत्तर और उत्तरा की माँ थी। शी हैड सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स हर किंगडम। सैरंद्री उसके लिए एक दासी थी। अगर आप किसी भी रॉयल इंट्रीग को पढ़ेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर आप यूरोपियन कल्चर्स का, अगर आप फ्रेंच कोर्ट के किस्से सुनेंगे, अगर आप इंग्लिश कोर्ट के किस्से सुनेंगे, या फिर आप इवन इजिप्शियन और सुमेरियन कोर्ट्स के किस्से सुनेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि देर वॉज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स विच वेंट अंडरनीथ। इज़ पॉलिटिक्स राइट, इज़ पॉलिटिक्स रॉन्ग, क्या पॉलिटिक्स कभी भी सच या झूठ, ठीक या गलत होती है? आई डोंट नो, आई थिंक पॉलिटिक्स इज जस्ट पॉलिटिक्स. सो वंडरिंग अबाउट सुदेशनास एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जिसमें उसने द्रौपदी को मदिरा लाने भेजा, जहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया कीचक की इस डिमांड को, वॉज इट रॉन्ग? जब ये सब हो गया, जब उनका अज्ञातवास पूरा हो गया, द्रौपदी ने सुदेशना को माफ़ कर दिया. क्यों माफ़ किया? क्योंकि इट वॉज एन एक्सेप्टेड थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द वुमन वुड साइड विद हर हस्बैंड, विद हर चिल्ड्रन, विद हर किंगडम. वो भी एक राज्य की रानी थी और कीचक उस राज्य के लिए इम्पोर्टेंट था. सैरंद्री एक दासी थी. सो आई वुड से एट द मोस्ट इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है कि क्या सुदेशना ने ठीक किया या नहीं किया. बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, शी हैड नो अदर ऑप्शन एट दैट पॉइंट इन टाइम. कीचक वॉज सो पावरफुल. नाउ लेट अस सी कि द्रौपदी ने क्या किया. द्रौपदी ने संयम बरता डिस्पाइट हर सिचुएशन, डिस्पाइट हर इंसल्ट. उसके बाल खींचते हुए, सेकेंड टाइम इन हर लाइफ, उसके बाल खींचते हुए कोई उसे लोगों के सामने लेके गया, राजाओं के सामने लेके गया, और राजा सिर्फ बैठे रहे, देखते रहे. दिस वॉज हर सेकेंड इंसल्ट, बट शी एक्सेप्टेड इट नॉट एज एन इंसल्ट बट एज अ चैलेंज. एंड दैट इज अ बिग थिंग. अगर आपकी इंसल्ट होती है, दो तरीके होते हैं आपके पास. एक तो आप उस इंसल्ट को दिल से लगा के, गले से लगा के, अंदर सिमर करते रहो, परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, कड़वाहट पाल के बैठ जाओ, या फिर आप उस इंसल्ट को एक चैलेंज लो और उस चैलेंज को लेकर के आप कुछ ऐसा करो जो अनप्रेसिडेंटेड हो. द्रौपदी ने कीचक को ख़त्म करा दिया भीम के थ्रू. वो क्यों भीम के पास गई? और भी थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पर उसे भीम पे कॉन्फिडेंस क्यों था? अर्जुन पे क्यों नहीं था, जो अर्जुन उसके फेवरेट थे एक टाइम पर, अर्जुन पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? इसका आंसर हमें तब मिलता है जब द्रौपदी इस सारे इंसिडेंट के बाद में अर्जुन से मिलती है, और अर्जुन अपनी उसी वेशभूषा में है जिसमें उनके बालों में चुटीले हैं, उनके हाथों में चूड़ियाँ हैं, जिसमें उन्होंने औरतों वाले कपड़े पहने हुए हैं, और वो कहते हैं, क्या हुआ द्रौपदी, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? तो वो कहती है कि तुम तो चूड़ियाँ पहन के इन्हें नाच गाना सिखाओ. द्रौपदी के दिल का दर्द उस समय जाहिर होता है कि पांच पतियों के होते हुए भी वो कितनी अकेले थी. और फिर उसने ये डिसीजन लिया कि वो भीम के पास गई, क्योंकि उसे पता था कि भीम को बहुत गुस्सा आता है जब उसकी इंसल्ट होती है. भीम को गुस्सा तेज आता है. उसे पता था कि भीम वॉज द ओनली वन who could handle this whole thing without letting anybody come to know about it. She was intelligent and that is why she went to Bhim. Well, I guess this is where it all ends. Ab zara hum dekhte hain apni zindagi ko. Let us look at our own lives. Hum kya karte hain when we are faced with adversity? Hum kya karte hain jab hame koi secret rakhna hota hai? हम क्या करते हैं जब हमें टीम्स में काम करना होता है? हम क्या करते हैं जब एक कॉमन पर्पस होता है हमारे सामने? और हम क्या करते हैं जब हमें ऐसी सिचुएशन में, जिसमें हम परेशान हैं, पागल हैं, जिसमें हम तकलीफ में हैं, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, उस तकलीफ में हम क्या करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस डू वी मेक? आर दे द राइट डिसीजंस? आर दे द मॉरल चॉइसेस? Are they the right choices? What kind of choices do we make? Truthfully speaking, हम में से सब probably without fail कभी ना कभी अपने emotions के सामने हार मानते हैं. मैंने भी मानी थी. In fact, जब इंसान काफ़ी अकेला feel करता है, जब उसे लगता है there is nobody he or she could turn to, उस समय वो बदहवास सा हो जाता है. उसके पास आंसर्स नहीं आते. क्वेश्चंस तो बहुत मंडरा रहे होते हैं उसके दिमाग के चारों ओर, लेकिन आंसर्स कोई नहीं होते. ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग, इंक्लूडिंग मैं, वी स्टॉप थिंकिंग. हमें गुस्सा आता है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम लड़ बैठते हैं लोगों से, हम दूसरे का व्यू पॉइंट देखना बंद कर देते हैं, हम ये सारी चीज़ें कर देते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमंस। बट द पॉइंट इज, ह्यूमंस होने की एक ब्यूटी ये भी है कि वी कैन इम्प्रूव, वी कैन चेंज, वी कैन इवॉल्व, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से प्लान करके अपने को बदल सकते हैं। एंड दैट इज़ वॉट वी शुड बी डूइंग, वी शुड बी ट्राइंग टू चेंज आवरसेल्व्स, वी शुड बी ट्राइंग टू लर्न एवरी डे। एक छोटी सी चीज़ भी अगर हम दिन में एक बार सीख लेते हैं तो वो दिन हमारा सार्थक हो जाता है। थिंक अबाउट इट, रिफ्लेक्ट ऑन इट, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी, रिफ्लेक्शन विल टेक टाइम। यू आर वेलकम टू लिसन टू इट अगेन इफ़ यू वॉन्ट टू, यू आर वेलकम टू टॉक टू मी अबाउट इट। क्योंकि द्रौपदी ने जो अकेलापन झेला, चाहे वो छोटा सा अकेलापन था, चाहे वो सिर्फ एक दिन का अकेलापन था, लेकिन उस एक दिन के अकेलेपन में उसे डिसीजंस लेने थे, उसने कुछ डिसीजंस लिए। उसके अंदर भी एक आग थी, एक गुस्सा था, एक हेल्पलेसनेस थी। उसे भी लग रहा था कि मैं पांडवों की पत्नी हूँ, मैं राजकुमारी थी, मैं रानी हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, उसे भी लगा था। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई स्टोरी में, जिसमें द्रौपदी आपको ये सब बताएगी, जिसमें द्रौपदी बात करेगी भीम से। आज की स्टोरी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड आई विश यू ग्रेट डिसीजन मेकिंग अहेड, बाय। जाने से पहले मैं एक और बात आपसे कहना चाहती थी, वो ये है कि तब से अब तक शो को अब आप गाना Amazon Music और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि सर्च बार में आप तब से अब तक शो का नाम टाइप करें एंड देन फॉलो इट। थैंक यू, बाय।